आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में एमएसएमई इकाइयों को 50,000 करोड़ रुपए का ऋण किया वितरित। कहा, पिछले 7 वर्षों में प्रदेश के परंपरागत उत्पादों को मिली नई पहचान। मुख्यमंत्री ने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का किया शुभारंभ। कहा, बदली हुई काशी को वर्ष 2014 के बाद सभी ने देखा। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार से विचार को बताया जरूरी। हाई कोर्ट की एकलपीठ के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दी प्रतिक्रिया। प्रदेश के 24 जनपद बाढ़ के पानी से घिरे, 5,62,000 से अधिक लोग हुए प्रभावित। और 1 अक्टूबर से मोटे अनाज की खरीद शुरू करेगी प्रदेश सरकार, तैयारियां आखिरी चरण में। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में एमएसएमई इकाइयों को 50,000 करोड़ रुपए का ऋण और हस्तशिल्पियों व कारीगरों को टूल किट वितरित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के परंपरागत उत्पादों को पिछले 7 वर्षों में फिर से नई पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में जिन योजनाओं को प्रदेश में शुरू किया गया, वो आज लाखों लोगों के लिए रोजगार का जरिया बन गई है।
प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने जिन योजनाओं को 2018 में 2019 में प्रारंभ किया, वे योजनाएं आज देश के अंदर एक लोकप्रिय योजना न केवल बनी है बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजगार और उत्तर प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही विश्वकर्मा जयंती पर पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को ई वाउचर, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र और ऋण के चेक प्रदान करने के साथ ही विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी ने 2014 के बाद बदली हुई काशी को देखा है। जैसे काशी बदली है, वैसे ही देश और उत्तर प्रदेश में भी बदलाव आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वच्छता के बहुत आग्रही हैं।
प्रधानमंत्री मोदी जी स्वच्छता के बहुत आग्रही हैं और मुझे लगता है स्वच्छ भारत मिशन ने लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाया है। ये हमारे जीवन का हिस्सा बने, हम में से हर व्यक्ति स्वेच्छाग्रही बने, इस अभियान का हिस्सा बने, इसको निरंतरता देने वाले बने। ये हमारा राष्ट्रीय मिशन बनना चाहिए, जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। कोई सार्वजनिक स्थल हो, कोई आस्था का केंद्र हो, कोई सार्वजनिक मार्ग हो, रेलवे स्टेशन हो या कोई भी स्थान, हम वहां पर स्वयं गंदगी भी न करें और न किसी को गंदगी करने दें। अगर कोई करता तो उसको बोले। मुझे लगता है स्वच्छ भारत मिशन की सफलता जनता जनार्दन की सहभागिता और स्वेच्छाग्रहियों के समर्पण पर निर्भर करता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन के अवसर पर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में हवन कर प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए प्रार्थना की। साथ ही मंदिर परिसर में 74 किलो के लड्डू का प्रसाद वितरित किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने वाराणसी में रक्तदान शिविर और लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्षों से बढ़कर अपना मार्ग बनाया। राष्ट्र के प्रति प्रेम, समर्पण और ईमानदारी उनके जीवन का हिस्सा है। यही वजह है कि पिछले 10 वर्ष में हमने बदलते भारत को देखा है। इसी क्रम में प्रदेश भर में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी गई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कल गाजियाबाद में स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने संबोधन में श्री गडकरी ने कहा कि सरकार ने विभिन्न सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण से निकलने वाले प्रदूषणकारी तत्वों से पर्यावरण के संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने यात्रियों और ऑटोमोबाइल कंपनियों से स्थायी प्रथाओं को अपनाने और वैकल्पिक हरित ईंधन जैसे CNG, हरित हाइड्रोजन और जैव इथेनॉल का उपयोग करने का आह्वान किया। श्री गडकरी ने राज्य मंत्री अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा के साथ एक पेड़ माँ के नाम के तहत एक पौधा भी लगाया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण NPS वात्सल्य योजना की आज शुरुआत करेंगी। प्रदेश के 6 जनपदों समेत 75 स्थानों पर इस योजना को लॉन्च किया जाएगा। प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत अयोध्या, सहारनपुर, लखीमपुर खीरी, देवरिया और संभल इस कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े रहेंगे। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई में वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पेश करते समय इस योजना को शुरू करने की घोषणा की थी। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कल बुलंदशहर में सामाजिक अधिकारिता शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर डॉ. वीरेंद्र कुमार ने वर्चुअली देश के 75 आकांक्षी ब्लॉकों में आयोजित हो रहे शिविरों का भी शुभारंभ किया। इन शिविरों का उद्देश्य दिव्यांगजनों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है, जिसके अंतर्गत 9,000 से अधिक पूर्व चिन्हित दिव्यांग लाभार्थियों को ADIP योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों के निःशुल्क सहायक उपकरण प्रदान किए गए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हुई। हाई कोर्ट द्वारा हिंदू पक्ष के दावों को सुनवाई योग्य मानने के बाद इस मामले में मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने कहा कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में कई तरह की कानूनी पेचीदगियां हैं, इस पर विस्तार से विचार की जरूरत है। कोर्ट ने शाही ईदगाह कमेटी की लगभग 1600 पेज की याचिका पर कहा कि रिट का परीक्षण किया जाएगा। 1 अगस्त को हाई कोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद ईदगाह विवाद को सुनवाई योग्य माना था। कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन के स्वामित्व को लेकर हिंदू पक्षकारों की ओर से दाखिल सभी 15 सिविल वादों को सुनने योग्य मानते हुए मुस्लिम पक्ष की 5 आपत्तियां खारिज कर दी। ईदगाह कमेटी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पहाड़ों पर हो रही बारिश और बांधों से नदियों में पानी छोड़े जाने की वजह से प्रदेश के 24 जनपद बाढ़ के पानी से घिर गए हैं, जिससे प्रदेश के विभिन्न जनपदों में रहने वाले 5,62,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं। गंगा से सटे बदायूं, गाजीपुर, बलिया और फतेहपुर, घाघरा नदी बाराबंकी, अयोध्या और तुर्तीपार में खतरे के निशान को पार कर गई है। वहीं गंगा नदी वाराणसी, कानपुर देहात और शारदा नदी लखीमपुर खीरी में खतरे के निशान से महज 0.5 मीटर नीचे है। वाराणसी प्रयागराज में नाव के संचालन पर भी रोक लगा दी गई है। प्रयागराज से हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट।
प्रयागराज में पिछले 5 दिनों से गंगा और यमुना नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि से प्रयागराज के 1 दर्जन से अधिक मोहल्लों में बाढ़ की स्थिति बनी है। साथ ही 100 से अधिक गांव इससे प्रभावित हैं। बाढ़ के मद्देनजर कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी बोर्ड के स्कूल आज 18 सितंबर को बंद रखा गया है। बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सभी क्षेत्रों में जल पुलिस और NDRF की टीम तैनात की गई है। बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए शहर और ग्रामीण दोनों इलाकों में कुल 7 जगहों पर अस्थायी कैंप और शरणालय बनाए गए हैं, जहां पर 2,000 से अधिक लोग शरण लिए हुए हैं। खतरे के निशान से गंगा और यमुना का जल 1 मीटर नीचे है। प्रयागराज में खतरे का निशान 84.7 मीटर है। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
प्रदेश में मोटे अनाज की खरीद प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू होगी, जो 31 दिसंबर तक चलेगी। सरकार की ओर से श्री अन्न में शामिल मक्का, बाजरा और ज्वार की खरीद के लिए किसानों का पंजीकरण और नवीनीकरण चल रहा है। खाद्य और रसद विभाग के मुताबिक इसके लिए किसानों का fcs.up.gov.in या यूपी किसान मित्र ऐप पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। श्री अन्न को बढ़ावा देने के साथ ही सरकार ने इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ाया है। मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,225 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा का 2,625 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार हाइब्रिड का 3,371 और ज्वार मालवांडी का 3,421 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में MSME इकाइयों को 50,000 करोड़ रुपए का ऋण किया वितरित। कहा पिछले 7 वर्षों में प्रदेश के परंपरागत उत्पादों को मिली नई पहचान। मुख्यमंत्री ने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का किया शुभारंभ। कहा बदली हुई काशी को वर्ष 2014 के बाद सभी ने देखा। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार से विचार को बताया जरूरी। हाई कोर्ट की एकल पीठ के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दी प्रतिक्रिया। प्रदेश के 24 जनपद बाढ़ के पानी से घिरे, 5,62,000 से अधिक लोग हुए प्रभावित। और 1 अक्टूबर से मोटे अनाज की खरीद शुरू करेगी प्रदेश सरकार, तैयारियां आखिरी चरण में। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।